الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. الحمد لله بہت خوشی ہے آپ سب کو دیکھ کے یہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ نے دوریاں ختم کر دیں, فاصلے سمیٹ دیے کہ ماشاءاللہ آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, میں بھی آپ لوگوں کو اس وقت دیکھ رہی ہوں اور آواز بھی آپ میری سن سکتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ کی بات, اس کا ذکر اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی الحمدللہ سن سکتے ہیں اور ویژولی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون بول رہا ہے الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید, اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, یہاں پر ایک ایک قدم پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہوں. جیسے آپ نے یہ ٹاپک سنا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. بعض لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں اللہ کی رحمت تو ہمارے لیے ہی ہے, بس ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں, ان کو بس یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے تو معافی کر دینا. یعنی نہایت بے پرواہی سے کہتے ہیں اور ذرا بھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. ایک یہ رویہ آپ کو ملتا ہے معاشرے میں, دوسری طرف آپ کو ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے قدرے مایوس نظر آتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے, میں تو اتنی گناہ گار ہوں اور میرے سے اتنی خطائیں ہو چکی ہیں پچھلی زندگی میں کہ اب تو میرے لیے کوئی معافی کا سوال ہی نہیں ہے, اب میرے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے. اور اس احساس کو لے کر وہ بالکل اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ رحمت اصل میں ہے کیا اور ملتی کیسے ہے اور کیا مجھے مل سکتی ہے. تو پہلے تو رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے رحمت کوئی معمولی بات نہیں ہے. رحمت کے قرآن کریم میں 16 معنی ملتے ہیں ہمیں, کچھ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ کو پتہ چلے رحمت ہے کیا اور یہ بھی پتہ چلے کہ رحمت میری اور آپ کی کتنی بڑی ضرورت ہے. اور یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ اچھا مجھے اگر اللہ کی رحمت نہیں بھی ملتی تو کوئی نہیں, نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے نا جو سب کے اوپر ہے, اپنی ساری مخلوق کے اوپر, جس کی وجہ سے ہی کافر, مومن, نافرمان, فرما بردار, مشرک, ایتھیسٹ, اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے یا جانور یا جو بھی چیزیں ہیں, وہ سب کھاتی ہیں, پیتی ہیں, رہتی سہتی ہیں یہاں پہ. یہ جو سارا نظام زندگی چل رہا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ چل رہا ہے. بعض دفعہ آپ بھی دیکھ کے حیران ہوتے ہوں گے کہ ایسے ایسے لوگ گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اپنے کلیجے پھٹ جاتے ہیں سن کے, ایسی ایسی خبریں کہ کیا کیا جرائم ہو رہے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے چل رہا ہے سب کچھ, زمین کیوں نہ پھٹ گئی, آسمان کیوں نہ گر پڑا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی. تو ایک رحمت تو عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے مومنوں کے لیے. تو کیا ہے رحمت؟ پہلی بات یہ, رحمت کا معنی ہے مہربانی, مہربانی. दूसरा माना है शफकत, शफकत आप समझते हैं ना, शफकत का माना मेहरबानी, शफकत। इमाम जुर्जानी कहते हैं कि रहमत अल्लाह ताला के इरादे का नाम है, कि अल्लाह ताला किसी के लिए खैर और बरकत का इरादा फरमा ले, इसको कहते हैं रहमत। इसी तरह इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि रहमत वो अजीम सबब है जिसकी वजह से मखलूक अपने खालिक के करीब होती है, यानी ये अल्लाह ताला की रहमत ही होती है कि मखलूक अपने खालिक से कुर्ब इख्तियार करती है। तो मेहरबानी हो गई, शफकत हो गई। इसी तरह अल्लाह ताला किसी के ऊपर खैर और बरकत के दरवाज़े खोल दे, ये रहमत है। अल्लाह ताला एक और माना बताती हूँ, अल्लाह ताला किसी के ऊपर अपने इनामात की बारिश फरमाए, इनामात का मुस्तहिक बना दे उसको, ये भी उसकी रहमत है। ठीक है, तो यानी सबसे बड़ा अल्लाह ताला का इनाम क्या है? हिदायत, ये सबसे बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है। तो यानी इंसान अगर हिदायत पा लेता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमत उसको मिल गई। तो ये एक लफ्ज़ बोल के इतने सारे माने इसके अंदर आ जाते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जब हम अल्लाह ताला से रहमत मांगते हैं तो इसका मतलब ये सब कुछ है कि हम अल्लाह ताला से मेहरबानी मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला से उसकी शफ़क़त मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला से खैर और बरकत मांगते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला हम पे अपने इनामात की बारिश फरमा, अल्लाह हमें हिदायत दे दे, और क्योंकि ये सबसे बड़ा इनाम है। और फिर हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब मांगते हैं, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगते हैं। जब हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहमत बरसा, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की मोहब्बत वो सबसे बड़ी चीज़ है जो किसी को हासिल हो जाए। किसी के दिल में अगर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है ना, तो इससे बड़ी रहमत क्या होगी? तो उसने सब कुछ पा लिया जिसने अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया। आप इसकी एक मिसाल आपको देती हूँ। साद बिन अबी वक़ास का नाम आपने सुना होगा, अशरा मुबशरा में से हैं। जब वो बूढ़े हो गए थे तो कुछ नौजवान उनके पास आया, कहने लगे अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा मिसाली वाक़या, जो यादगार वाक़या है वो सुनाए हमें। तो साद फरमाते हैं कि उहद की जंग का वाक़या है। अगले दिन जंग होनी थी, मुसलमानों ने अपने कैंप लगा लिए थे, शाम का वक्त था। कहते मैं और अब्दुल्ला बिन जहाज जो है, हम एक पहाड़ की ऊपर चढ़ गए और हम वहाँ पे बैठ गए, हवा चल रही थी। मैंने अब्दुल्ला बिन जहाज से कहा, क्यों ना हम अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर ले, कल हमने जंग पे जाना है तो कोई दुआ मांगते हैं अपने लिए। तो अब्दुल्ला बिन जहाश ने फरमाया कि आप पहले दुआ कीजिए। तो साथ दुआ करते हैं, या अल्लाह कल जंग है, हम तेरे रास्ते में निकले हैं, या अल्लाह कल मेरे लिए ऐसा कोई दुश्मन भेजना जो बड़ा जंगजू हो, वो मुझसे लड़ाई करे, मैं उससे लड़ाई करूँ, फिर मैं उसको कत्ल कर दूँ और फिर मैं उसका सामान, उससे माले गनीमत ले लूं और फातेह होके लौटूं। फिर अब्दुल्ला बिन जहश की बारी आई तो क्या फरमाते हैं, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कल जब जंग शुरू हो तो मेरे मुकाबिल ऐसा दुश्मन भेजना जो बड़ा जंगजू हो, बड़ा बहादुर हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर वो मुझे कत्ल कर दे, मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, और वो मेरे नाक और कान काट दे, और फिर ऐ अल्लाह जब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं तो तू पूछे, ऐ अब्दुल्ला तेरे नाक और कान को क्या हुआ? तो मैं कहूँ या अल्लाह तेरी खातिर कुर्बान हो गए। तो तू कहे, ऐ अब्दुल्ला मैं तुझसे राजी हो गया। यानी जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है तो सबसे बड़ी तमन्ना क्या हो जाती है? कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। बस इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए थे और वहाँ से लौट रहे थे, ये ताइफ का दिन ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन था। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था, फरमाया ताइफ का दिन। तो जब लौट रहे थे उस वक़्त ताइफ के जो सरदार थे उन्होंने औबाशों को खड़ा कर दिया था, दोनों तरफ कतारें लगा के खड़े हो गए थे और पत्थर मार रहे थे, जिससे नबी अलैहिस्सलाम के ज़ख्मी हो गए, खून बहने लगा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए थे, पैर चिपक गए थे जूतों के साथ। और उस वक़्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी जाके उतबा और शैबा के बाग में, तो उस वक्त क्या दुआ की थी, दुआए मुस्तदाफीन जिसको कहते हैं, कि या अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया इन लोगों के। अपनी शिकवा अल्लाह से किया, अल्लाह मैं अपनी शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूँ। और फिर क्या फरमाते हैं, अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे परवाह नहीं है। यानी सबसे बड़ी चीज़, हालांकि कितना मुश्किल देना, सबसे बड़ी चीज़ उनके नज़दीक क्या थी, अल्लाह बस तू मुझसे राज़ी होना, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे परवाह नहीं। तो जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत पाता है ना, तो उसकी रज़ा उसकी ज़िंदगी की तमन्ना बन जाती है, कि अल्लाह तू मुझे अपना महबूब बना ले और अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह अपनी रहमत से जिसको नवाजता है उसको अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। तो जब हम अल्लाह की रहमत मांगते हैं तो हम उसकी मोहब्बत मांग रहे होते हैं। फिर रहमत को और माना क्या है, रिज्क। जब हम अल्लाह ताला की रहमत मांगते हैं तो हम रिज्क मांगते हैं, कि अल्लाह तू हमें रिज्क अता फरमा। और आप देखें, रिज्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज्क अल्लाह की तमाम नेमतें उसका दिया हुआ रिज्क ही हैं। हाँ, हम जब अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह अपनी रहमत दे दे, तो अल्लाह ताला हमें सुकून भी देते, अल्लाह ताला हमें सेहत भी देते, अल्लाह हमें आफ़ियत भी देते, ये सब चीज़ें रिस्क हैं। अल्लाह हमारे आज़ा की सलामती भी हमें दे, ये तमाम रिस्क में आ जाती है। तो आपने रिस्क भी मांग लिया अल्लाह से, फिर और क्या चीज़ है, अल्लाह ताला की रहमत। अल्लाह की रहमत ये भी है कि इंसान जब अल्लाह से रहमत मांगता है तो असल में आजमाइशों से बचने की इल्तजा करता है, कि अल्लाह मुझे, मैं कमज़ोर हूँ, मैं आजमाइशों से नहीं बच सकती, मैं आजमाइशों में पूरा नहीं उतर सकती, ऐ अल्लाह तू मुझे बचाना आजमाइशों से, मुश्किलात से, इम्तिहानों में साबित कदमी देना। फिर और रहमत क्या होती है, दुश्मन से बचने की इल्तजा, कि अल्लाह मुझे दुश्मन से बचा के रखना। और कौन कौन से दुश्मन, अंदर के भी दुश्मन और बाहर के भी। बाहर आपका दुश्मन शैतान है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वलाउला फ़ज़लुल्लाही व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला, अगर अल्लाह का फ़जल और उसकी रहमत ना होती ना तो तुम सब शैतान के पीछे चल पड़ते। और अल्लाह की रहमत होती कि अल्लाह शैतान के फितनों से, उसके वसवास से बचा के रखे इंसान को, उसके पीछे जाने से, उसकी तिबा से बचा ले इंसान को। इसी तरह बारिश को भी अल्लाह की रहमत कहते हैं ना, कहते हैं ना बारिश अल्लाह की रहमत हो गई, तो ये बारिश ये रहमत इलाही है। बाज़ दफ़ा इसके अंदर अजाब भी होते हैं, लेकिन वैसे जिस वक़्त बहुत खुश्की के बाद बारिश आती है तो ये अल्लाह की रहमत गिनी जाती है। इसी तरह जन्नत अल्लाह की रहमत है। आप देखिए, जन्नत भी इंसान अपने आमाल से हासिल नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह आप भी नहीं? आपने फरमाया नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी सिर्फ अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जा सकता हूँ। यानी हम सब को जन्नत में जाने के लिए क्या चाहिए, अल्लाह की रहमत। अगर अल्लाह की रहमत ना हो, हम सोच लें कि हम इतनी नेकियां करते हैं, मैं पढ़ती तो हूँ, मैं नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, कितने सारे इंसान के नेकी के काम उसके सामने आ जाते हैं, तो मैं तो जन्नत में जाऊँगी ही जाऊँगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं इंसान अपने अमल की वजह से जन्नत में जा सकता, फिर अमल करने की ज़रूरत क्या है, फिर क्यों हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज उमरे करते हैं, क्यों करते हैं, फिर क्या ज़रूरत है, अल्लाह की रहमत से ही जाना है। तो असल में बात यह है कि ये जो नमाज रोज़े ये सब हम करते हैं ना, ये तो सिर्फ़ अल्लाह की रहमत को आवाज़ देने के लिए करते हैं कि अल्लाह किसी तरह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए हमारी तरफ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारे अपने अमल इस काबिल हैं कि वो हमें जन्नत तक ले जाएं। हम कहते हैं हम अमल करते हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमें मिले, और उसकी रहमत जन्नत है। क्योंकि जन्नत, देखिए, अगर हम अपने आमाल को सिर्फ ले लें, अगर हम सोचें कि हम इतनी नेकियां करते हैं हम इस बदौलत जन्नत में चले जाएंगे, तो कयामत के दिन एक तरफ इंसान के अमल होंगे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला नेमतें रख देगा जो अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई, और अल्लाह ताला फरमाएगा कि नेमतों की कीमत अदा करो। तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी के अमल पेश कर देगा, तब भी वो इन नेमतों की एक नेमत की भी कीमत अदा नहीं कर सकेगा। यानी आप सारी नेमतें तो छोड़ें, सिर्फ एक नेमत की जब कीमत इंसान नहीं अदा कर सकता, तो नेमतें तो उसको इतनी बेशुमार मिली कि वो नेमतों को गिन ही नहीं सकता, तो वो बाकी नेमतों की कैसे कीमत देगा। अब उसकी सारी नेकियां तो चली गई एक नेमत की कीमत देने में, तो अंदाजा कीजिए कि अभी बाकी सारी नेमतें पड़ी हुई हैं, और किस के भरोसे पर वो जन्नत में जाना चाहता है, इन नेकियों के। तो जो भी हम करते हैं, अगर आपको कोई कहे भी ना आप तो बड़ी नेक हैं, आप तो इतनी नेकियां करती हैं, तो याद रखिए ये जो जो भी हम कर रहे हैं वो अभी एक नेमत की कीमत भी हमने अदा नहीं की है, चाहे हम सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहें। तो इसलिए जन्नत का हुसूल सिर्फ अल्लाह की रहमत से हो सकता है। इमाम ज़ुरार राज़ी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 7 लाख अहादीस याद की हुई थी। मैंने जो डिफरेंट चेन से आती हैं वो तमाम चेन सनदों के साथ उनको अहादीस याद थी। किसी ने उनसे पूछा आपने इल्म के लिए कितना सफ़र किया, कहने लगे 30,000 मील। और उस वक्त तो कितना कितना मुश्किल सफ़र होता था, कोई जहाज़ों में सफ़र नहीं करते थे। उसने कहा बस इतना ही किया, तो कहने लगे उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। इतना सफ़र किया उन्होंने अहादीस के लिए, और इतनी अहादीस उनको याद थी। तो उनका वाक्या आता है कि जब बिस्तर मर्ग पे थे तो कहने लगे या अल्लाह मुझे अपना दीदार करवाना। तो किसी ने कहा आपको नहीं अल्लाह का दीदार होना तो और किसको होना है, आपको तो होगा ही होगा, आप इतने नेक, आप इतने बड़े मुहद्दिस। तो कहने लगे मैं अल्लाह के सामने कौन सी नेकी पेश करूंगा, मेरे पास कोई नेकी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत हो सकती है कि मैं उसकी वजह से सवाल करता हूँ कि मुझे अपना दीदार करा दे। ये इतने बड़े मुहद्दिस की बात है, और बाकी लोग फिर क्या किस खाते में रहे। तो जन्नत इतनी आसान नहीं है, जन्नत हक नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए, जन्नत की ज़मीन पे कदम रखने के लिए हमें अल्लाह की रहमत चाहिए। जन्नत सस्ती नहीं है, जाहिर है जन्नत क्या जगह है। अब देखें जन्नत की डिस्क्रिप्शन जो आती है, इमाम इब्ने कय्यिम जौज़ी अपनी किताब में लिखते हैं जन्नत के बारे में कि अगर तुम मुझसे जन्नत के बारे में पूछो तो उसकी मट्टी मुश्क की है और ज़ाफ़रान। अब ज़ाफ़रान यहाँ पे आप लेने जाएं तो आपको दुनिया में इतनी सी डिब्बी मिलती है, और वो भी कितनी महंगी होती है, वो इसकी मिट्टी है। उसके पत्थर कैसे हैं, उसके पत्थर ये नहीं है पत्थर मट्टी के, उसके पत्थर हैं मोती और मूंगे। एक एक पर्ल की क्या कीमत होती है, जो सच्चे मोती होते हैं, रियल पर्ल्स होते हैं, उनकी कीमत का अंदाज़ा कर सकते हैं आप। एक मोती भी कितना कीमती होता है, और वहां पे बिखरे पड़े हैं मोती। और उसकी इमारतें कैसी हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं, महल्लात किसके बने हुए, मट्टी गारे के नहीं, एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। और जन्नत का, जन्नत की छत क्या है, ये आसमान नहीं है नीला आसमान, जन्नत की छत अल्लाह का अर्श है। जब ऊपर सर उठा के देखेंगे तो अल्लाह का अर्श नजर आएगा। اور اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی سب سے حسین ترین مخلوق ہے. اور جنت کی نہریں کیسی ہیں؟ یہ جو آپ اتنا پڑھتے ہیں نا کہ جنت میں نہریں ہوں گی, یہ ایسی نہریں نہیں ہوں گی جیسے ہماری نہریں ہوتی ہیں کہ زمین کے اندر کھدی ہوئی ہیں, گڑھے ہیں, ان کے اندر پانی چل رہا ہے. نہیں, ابو دا گراؤنڈ ہے. آپ کوئی منظر امیجن کرتے ہیں؟ کبھی کبھی سوچتے ہیں آپ کی جنت کیسی ہوگی؟ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں اور بڑی خوبصورت جگہ پہ, تو ہم سوچتے ہیں یہ کتنی کیسی کتنی ایسی ہوگی جنت, شاید ایسی ہوگی جنت. ذرا دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کوئی حسین ترین منظر. شاید آپ نے دیکھا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کسی میگزین میں دیکھا ہو, کہیں ٹی وی میں دیکھا ہو, کوئی منظر ایسا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہو. ذرا دیر کے لیے ذہن میں لے کر آئیں. کوئی پکچر آئی آپ کے ذہن میں؟ جانتے ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں آیا نا, وہ جنت نہیں ہے. جنت اس سے بہت زیادہ اونچی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت وہ جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل پہ اس کا تصور بھی گزر سکتا. تو جو تصور میں آپ کے آیا وہ تو جنت ہے ہی نہیں. جنت تو اس سے بہت اونچی چیز ہے. تو آپ سوچ لیں کہ آپ کے تصور میں جو خوبصورت ترین جگہ آئی ہے نا, جنت اس سے بڑھ کے ہے. تو اس کے درخت کیسے ہوں گے؟ جن کے تنے سونے اور چاندی کے ہوں گے, اور اتنے گھنے سائے اور اتنے لمبے سائے کہ گھڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. اور چل کرنے کے لیے صرف خیمے کیسے ہیں؟ ایک خیمہ موتی کا ہوگا, صرف ایک موتی کا, اور وہ 60 miles بڑا چوڑائی اس کی ہوگی, 60 miles. اور ایک جنتی جو ادنا ترین جنتی ہوگا نا, وہ اپنی جنت کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا. ادنا ترین جنتی بھی, اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے اور 10 گنا زیادہ. تو کتنی ہوگی ایک ادنا جنتی کی جنت؟ آپ سوچیں کہ ہم اپنے عمل سے کیا ایسی جنت کی کبھی قیمت دے سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اس جنت کو, بس یہ ہم نے ایسی نمازیں پڑھ لیں, جیسا مرضی ہم نے کر لیا, تو اس کے بعد ہم ایسی جنت کو خرید پائیں گے؟ اور پھر وہاں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں وہاں کے بارے میں. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیسی وہ جنت ہوگی. وہاں کی شراب کا اور کراکری کا آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ عورتوں کو بڑی کراکری کی خوبصورت لگتی ہیں اور بڑے جمع کرتی ہیں برتن جگہ جگہ سے, کہ اس کے برتن جو ہوں گے وہ چاندی کے برتن ہوں گے, اور وہ ایسے برتن ہوں گے جو جام ہوں گے شیشے کے, اور چاندی جو ہوگی وہ بھی شیشے کی طرح ہوگی. اب اللہ عالم وہ کیسی چاندی ہوگی جو سی تھرو ہوگی, یا کیا کرسٹل ہمارے ذہن میں آتا ہے, یا کیا آتا ہے کہ وہ کون سی چاندی ہوگی جو شیشے کی طرح ہوگی. اور انہیں وہ جام پلائے جائیں گے, وہ یسقون فیہا کأسن کان مزاجہ زنجبیلا, زنجبیل کی جس میں آمیزش ہوگی. اور پھر اس میں ایک نہر بھی ہے جس کا نام سلسبیل ہے, اور بتایا گیا یہاں پہ کہ ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ ینگ رہیں گے, اور وہ ان کو یہ جام ان کے آگے پیش کریں گے. تو ایک جگہ پہ آیا پلائے جائیں گے, دوسری جگہ پہ آیا اس سے اوپر کے کوئی شاید جنتی ہیں, یا جو پہلے درجے کے جنتی ہیں, کہ ان کو خادم پلائیں گے, خادم ان کو شراب پلائیں گے. ایسے خادم ہوں گے جو کم سن بچے ہوں گے, یعنی ان کے ویٹرز جو ہوں گے. اور اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست بات کی گئی, اور یہ ظاہر ہے جو اونچے درجے کے جنتی ہوں گے ان کے لیے. اور ان کے لیے کیا آتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا. جہاں پہ میزبان رب ہو وہ جگہ کیسی ہوگی؟ اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں. تو یہ جنت ہے, یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, ये जन्नत की कीमत अल्लाह ताला की रहमत ही है, इसके अलावा इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, कोई दे नहीं सकता कि हाँ हम भाई ये काम कर लेंगे तो आप जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह की रहमत है ये सरासर। इसी तरह रहमत का एक माना है बख्शिश, कि बख्शिश की नवीद मिल जाए किसी को, किसी को ये अल्लाह ताला खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया, ये है रहमत अल्लाह की। और अल्लाह ताला हम सबको ये अता फरमाए। हम देखते हैं बाज़ दफ़ा इंसान से वो गुनाह हो जाते हैं जो कबीरा गुनाह कहलाते हैं, तो वो मायूस हो जाता है और सोचता है कि अब नहीं मुझे कभी बख्शिश मिल सकती। हालांकि आपको पता है कि मैदाने जंग से भाग जाना ये भी एक बड़ा गुनाह है। और आप ये भी जानते होंगे जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के बारे में पढ़ा कि हज़रत काब, उनकी बख्शिश अल्लाह ताला ने की थी जबकि वो मैदाने जंग से भागे थे, वो तबूक में नहीं शामिल हुए थे। 50 दिन तक उनका बायकॉट रहा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में उनके और उनके और दो साथियों के मुतल्लिक तौबा की खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। वक्त चूंकि इतना नहीं है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा प्यारा वाक़या बुखारी और मुस्लिम में है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इनकी बख्शिश फरमाई थी। तो रहमत ये भी होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश हो जाए। इसी तरह रहमत ये भी है कि इंसान को अल्लाह ताला अज़ाबों से निजात देते हैं। अल्लाह ताला अपने अज़ाबों से उसको दूर कर दे, ये भी अल्लाह की रहमत है। हदीस में आता है कि एक क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा जिसको जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, जब वो जहन्नुम के करीब पहुंचेगा तो जहन्नुम की आग उससे पीछे हट जाएगी। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, हालांकि वो हर चीज़ का इल्म रखता है, अल्लाह ताला ने हमें बताना चाहा है, अल्लाह ताला उससे सवाल करेंगे कि तू क्यों पीछे हट गई, तो वो कहेगी या अल्लाह ये तेरी पनाह मांग रहा है मुझसे, और जो तेरी पनाह में आ जाए मैं उसको कैसे छू सकती हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसने मेरी पनाह तलब की तो मैंने इसको पनाह दे दी, और अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे और उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। इसी तरह एक और हदीस में वाक्य आता है कि एक आदमी को जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा और वो पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, तो अल्लाह ताला सवाल करेंगे क्यों पीछे मुड़ के देखता, तो कहेगा या अल्लाह मैंने सुना था कि तू बड़ा गफूर रहीम है, तू बख्शने वाला, मैं देख रहा हूँ कि कब तेरी रहमत जोश में आए, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने मेरे बारे में ये सुना है तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तूने मेरी रहमत को पुकारा है तो मैंने तुझे बख्श दिया। तो अल्लाह ताला अजाबों से निजात दे दे किसी को, ये उसकी बहुत बड़ी रहमत है। तो ये है अल्लाह ताला की रहमत, और उसकी रहमत की वसत कितनी है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में उतारा है। उस एक हिस्से की वजह से कोई माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, कोई जानवर अपने बच्चे के साथ शफकत करता है। जितनी मोहब्बत आप यहाँ पे देखते हैं ना, चाहे वो माँ बच्चे की है, चाहे वो शौहर बीवी की है, चाहे बहन भाइयों में है, चाहे दोस्तों में है, चाहे किसी जानवर को भी आप देखते हैं किसी के साथ मोहब्बत करते हुए, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहते हैं वो रहमतुल्लिलआलमीन थे, उन्होंने अपनी उम्मत के साथ जो मोहब्बत और शफकत का मामला फरमाया है वो सब सिर्फ उस एक रहमत का हिस्सा है जो अंबिया को भी मिला है, जो माओं को मिला है, जो इंसानों में सब में तकसीम हुआ, हत्ता के जानवरों तक में तकसीम हुआ। उस इतने से हिस्से की बदौलत कोई अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। जो भी माएँ बैठी हैं वो सोचें कि औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, तो वो उस एक हिस्से का, एक पूरा हिस्सा नहीं आपको मिला, उस एक हिस्से का जरा सा जर्रा आपको तकसीम हुआ। तो सोचें, जिसके पास 99 हिस्से होंगे उसकी रहमत का अंदाजा कीजिए कि कितनी होगी। और उसकी यही रहमत है कि जिसकी वजह से ये कायनात चल रही है। ऐसे रब की रहमत से मायूस होना फिर कुफर है। इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों को भेजते ना, जाओ मेरे बेटो जाके यूसुफ का पता लगाओ, तो कहते हैं इन्नहू ला याउसु मिन रूहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरीन, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर। काफिर सिर्फ मायूस होता है, मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। आपने हमेशा लोगों को कहते सुना होगा, शराब हराम, जिना हराम, और कई गुनाहों को, कि ये हराम ये हराम। लेकिन आपको पता है अल्लाह की रहमत से मायूस होना भी हराम है। आपने कभी ये सुना है कि ये भी हराम है? फिर भी कितने सारे लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो अल्लाह से दूर हो जाते हैं और उससे शिकवे शिकायतें करते हैं, और उनको यकीन नहीं है कि उसकी रहमत है हम पर और उसकी रहमत ने कायनात को घेरा हुआ। तो अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत का अंदाज़ा हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी रहमत हर चीज़ पे छाई हुई है। हम जान ही नहीं सकते कि अल्लाह की रहमत कितनी है, क्योंकि हमारी अकल इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला की रहमत को तोल सके, नाप सके कि कितनी है रहमत अल्लाह की। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अल्लाह ताला की एक रहमत वो है जो उसकी सारी मखलूक पे है, और एक उसकी ख़ास रहमत है जो उन लोगों को मिलती है जो अपने आप को उस रहमत का मुस्तहिक ठहराते हैं। वो किन लोगों को मिलती है और क्या वो ख़ास रहमत मुझे मिल सकती है? तो इसके लिए आज मैं आपको 10 काम बताऊंगी जो करने से आपको मुझे अल्लाह ताला की ये रहमत मिल सकती है। पहला काम करने का क्या है? हम सोचते हैं अल्लाह ताला की रहमत का मतलब है बेखौफ हो जाना, है ना? हम सोचते हैं अल्लाह की रहमत का मतलब ये है कि हमें ये डर ही ना रहे और हम बस कहें अल्लाह गफूर रहीम है, तो ये बस उसकी रहमत हो गई, हमें मिल गई उसकी रहमत। नहीं, जानते हैं खौफे खुदा ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत इससे मिलती है जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ हो जाए। जितना अल्लाह का खौफ ज़्यादा है उतनी अल्लाह की रहमत मिलेगी, जितना ज़्यादा। देखिए, एक आदमी था, हदीस में आता है, बुखारी में यह हदीस है, जिसने बड़े गुनाह किए थे। जब वो मरने लगा तो अपने बेटों को बुलाया, कहने लगा जब मैं मर जाऊँ ना तो मुझे जला देना और मेरी राख को हवाओं में उड़ा देना और समुद्रों में बहा देना। जब वो मर गया तो उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हवाओं को, उन्होंने इकट्ठा किया उसको और वो खड़ा हो गया। अल्लाह ने उसको ज़िंदा करके अपने सामने खड़ा किया और पूछा तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कहा? कहने लगा या अल्लाह तेरे खौफ से कि मेरे पास कोई नेकी नहीं है, अल्लाह मैं डरता था कैसे तुझे हिसाब दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया कि तूने मेरा खौफ रखा। तो अल्लाह ताला का खौफ इतनी बड़ी चीज़ है, मामूली बात नहीं है। जो अल्लाह का खौफ रखता है अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमतों की बारिश फरमाता है। फिर इसी तरह हमें पता चलता है कि हदीस में आया है कि दो कतरे ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला को इतने पसंद हैं कि जो इनका हामिल होगा अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से आज़ादी दे देंगे। वो दो कतरे कौन से हैं? एक कतरा खून का है जो मुजाहिद के जिस्म से निकलता है, जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ लड़ने के लिए। वो कतरा ज़मीन पे गिरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम को हराम कर देते हैं। और दूसरा कतरा एक बंदाए मोमिन की आँख से आंसू का कतरा है जो जब ज़मीन पे गिरता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नुम को हराम कर देते हैं। यानी जब इंसान की आंख से आंसू टपकता है और आंसू का कतरा जमीन पे गिरा, ये आंसू क्यों निकला? खौफे खुदा से, अल्लाह को याद करके, अपने गुनाहों का सोच के। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम को हराम कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो इतने आंसू तो नहीं बहा सकते कि वो जमीन पे गिर जाएं। तो अल्लाह ताला ने तख़फीफ कर दी। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह की याद में, उसके खौफ से, उसकी रहमत की उम्मीद में अपने गुनाहों को सोच के आंसू बहाता है, और इतने आंसू बहाता है कि उसके चेहरे पे आंसू पड़ जाते हैं, और तन्हाई में बैठा वो रो रहा है, उसके चेहरा चेहरे पे आंसू आ गए, तो ऐसे शख्स को अल्लाह जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, वो दिन जो 50,000 साल के बराबर है, उस दिन में अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, जहन्नुम से भी आज़ादी देगा। क्यों? खौफे खुदा से रोया। हम सोचते हैं खौफे खुदा से इतना रोना कि आँखों से आंसू इतने बहें कि चेहरे पे गिर जाएं, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो देखें, एक मज़ीद तख़फीफ कर दी गई। और वो हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदाए मोमिन इतना बस रोता है अल्लाह के खौफ से, या उसकी रहमत की उम्मीद में, या अपने गुनाहों को याद करके, बस ऐसा रोया, इतना सा रोया कि आंख में बस पानी आ जाए, कितना पानी आ जाए? फरमाया, मक्खी के सर के बराबर। कितना? मक्खी के सर के बराबर। अगर इतना सा भी पानी आ गया, जैसे कहते हैं ना, आंखें भीग गई, आंखों में एक पानी सा आपको नज़र आने लगता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम से आज़ाद कर दिया। ये है खौफे खुदा, जो अल्लाह की रहमत को आवाज़ देता है, यानी अल्लाह की रहमत मुतवज्जी हो जाती है ऐसे इंसान की तरफ जो अल्लाह के खौफ से रोता है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि खौफे खुदा भी बहुत बड़ी नेमत है, ये भी वो चीज़ है जो हमें अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक कर सकती है। तो बेखौफ ना हो ज़िंदगी में, बेखौफ की ज़िंदगी ना गुजारें कि कोई हमें परवाह नहीं है, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, आज जो हमने सुन लिया इतनी ज़्यादा अल्लाह की रहमत तो मुझे नहीं मिलनी तो और किसको मिलनी है। वो काम करें जिनसे अल्लाह की रहमत आपकी तरफ हो। इसी तरह अल्लाह ताला की रहमत उसके लिए है जो कुरान को अपना साथी बना लेता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कुरान में, कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और इसमें रहमत है। जो रहमत का मुतलाशी है ना, आप में से जो जो चाहता है मुझे अल्लाह की रहमत मिल जाए, और अभी हमने बात की अल्लाह की रहमत कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह की रहमत है, आपको क्या क्या मिल सकता है जब आप कहते हैं मुझे अल्लाह की रहमत मिल जाए, वो कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। कुरान से जितना आपका ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतनी अल्लाह की रहमत आप पे बरसेगी। और कुरान वो वाहिद इल्म है, वाहिद इल्म है जिसका फ़ायदा इस दुनिया की ज़िंदगी में तो है ही है, यहाँ पे तो हमें गाइड करता है, हिदायत देता है, राह दिखाता है, हमें समझ आती है हमने क्या करना है, लेकिन ये वो वाहिद इल्म है कि जो सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है इसका फ़ायदा। देखिए सारे इल्म, आप चाहे मेडिसिन पढ़ लें, आप इंजीनियरिंग पढ़ लें, आप आर्किटेक्चर पढ़ लें, आप चाहे बिजनेस पढ़ लें, कंप्यूटर साइंस पढ़ लें, जो मर्ज़ी इल्म ले लें, आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ये तमाम उलूम जैसे ही आपकी आंख बंद होती है यहीं रह जाते हैं। आपने चाहे पीएचडी की भी है, या आपने डबल ट्रिपल कोई और डॉक्टरेट की डिग्रियां ली हुई हैं, कितने बड़े तमगे आपको दुनिया में मिले हुए, जो ही आंख बंद होगी इसके फवायद ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, आप दुनिया में आपको फ़ायदे मिलेंगे, इज्जतें मिलेंगी, उससे भी पैसे कमा लेंगे आप, लेकिन मौत की आते ही ये फवायद ख़त्म हो जाएंगे। मगर कुरान वो इल्म है, कुरान का जिसने साथ ले लिया तो ये कब्र में भी साथी बनेगा जब सब मुंह मोड़ के चले जाएंगे। ये कब्र में आपके साथ जाएगा और ये कब्र में साथी बनेगा, आपकी तन्हाई का साथी। कब्र में ये नूर बन जाएगा, इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि नूर है। ये कब्र के अंधेरों को दूर कर देगा और हशर के मैदान में जब अंधेरे होंगे वहाँ पे भी रोशनी का काम देगा। इंसान के लिए सिफारशी बनेगा, शिफात करेगा उसके हक में जिसने इसको इमाम बनाया। इमाम बनाना क्या होता है, यानी इसको फॉलो किया। जैसे हम दुनिया में इमाम को फॉलो कर करके नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो रुकू में जाता है हम जाते हैं, वो सजदे में जाता है हम जाते हैं, वो खड़ा होता है तो हम खड़े होते हैं। जिसने इस तरह इस कुरान को फॉलो किया, ये उसके लिए सिफारिश करेगा, ये उसको जन्नत में पहुंचाएगा। तो ये कुरान जिसने इसको मजबूत थाम लिया उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। तो चाहते हैं अगर आपके अल्लाह की रहमतें आपको मिले इस दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी, तो कुरान का साथ ले लें। तीसरी चीज़ वो है अल्लाह की मखलूक पे रहम। देखिए आप, वो शेर भी है ना कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। यानी तुम अल्लाह की मखलूक पे रहम करते हो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा, अल्लाह अपनी रहमतों की चादर में समेट लेगा। हदीस में आता है जब इंसान एक चिड़िया को, वो इंसान अगर एक चिड़िया को ज़िबा करने में भी नरमी करता है तो अल्लाह ताला इसकी बदौलत भी उसके ऊपर रहम फरमाता है। यानी आपने एक अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी की है, अल्लाह ताला आपके साथ मेहरबानी करेगा। तो ये भी एक तरीका अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करने का कि आप रहम दिल बन जाएं, जो भी आपके इर्द गिर्द वाले उनके ऊपर रहम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे तो एक बद्दू आया, कहने लगा आप बच्चों के साथ इतना ही मोहब्बत करते हैं, इतनी शफकत कर रहे हैं, उसको चूम रहे और ऐसे, हमने तो अपने बच्चों को कभी नहीं चूमा। तो आपने फरमाया मैं क्या कर सकता हूँ अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत उठा ली है तो। यानी ये भी अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह की मखलूक के ऊपर रहम करे। बच्चे हैं, कुरैश की औरतों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई कि वो बच्चों के साथ बड़ी शफकत करती हैं। तो चाहे आपके अपने बच्चे हैं उनके साथ शफकत कीजिए, लोगों के साथ रहम का मामला कीजिए, रहम करें, सख्त दिल ना बने कि जिसको किसी पे रहम नहीं आता। जितना आपका दिल नरम होगा अल्लाह की मखलूक के लिए, चाहे वो कोई मखलूक है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो चरिंद परिंद हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो अपना है, चाहे गैर है, चाहे मोमिन है, चाहे काफिर है, चाहे कुत्ता है, आप सबको ये बात हदीस सबको मालूम है। ये एक औरत ने, फाहिशा औरत थी, और उसने कुत्ते के साथ नेकी की कि उसकी प्यास को बुझा दिया, पानी उसको पिला दिया, तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, अल्लाह की रहमत आई ना। मैंने आपको रहमत का एक माना क्या बताया, बख्शिश की खुशखबरी, अल्लाह किसी को बख्श दे ये उसकी रहमत। तो उस औरत को अल्लाह की रहमत कैसे मिली, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छाई करके, भलाई का मामला करके। तो अपने दिल को नरम कीजिए, सख्त ना बने जिसका दिल पसीजे ही नहीं किसी के लिए भी। इसी तरह चौथी चीज़ क्या है, एहसान करना। एहसान वो एहसान नहीं जिसको हम कहते हैं नहीं मैंने उसके साथ इतना किया था उन्होंने फिर पलट के क्या किया, ये तो आपने अपनी नेकी गंवा दी। एहसान का माना क्या है, एहसान का माना है किसी को हक से ज़्यादा दे देना, जितना उसका हक बनता था उससे बढ़ के अता कर देना, किसी के साथ एक्स्ट्रा मेहरबानी का मामला कर देना। हमें ऐसे मौके मिलते हैं ज़िंदगी में, हम कहते हैं कंधे उचका के मैं क्यों करूं, मैं ही कर गई हूँ करने के लिए, खुद ही कर लें ना, मुझे क्या पड़ी है। देखिए एक आदमी जा रहा था, ये भी बुखारी की रिवायत है कि जा रहा था, उसने रास्ते में एक तकलीफ़देह चीज़ देखी, उसने सोचा लोग यहाँ से गुजरेंगे उनको तकलीफ़ पहुँचेगी, उसने उसको रास्ते से हटा दिया, अल्लाह ताला ने इसके ऊपर उसकी बख्शिश फरमा दी। तो कैसे अल्लाह की रहमत आई, اس نے احسان کا معاملہ کیا، اس کے اوپر کوئی فرض نہیں تھا، یہ احسان، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کیجیے، لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا کیجیے. اور احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی عبادت کی جائے جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ سوچ لیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا، یعنی اتنی زبردست عبادت کریں، اتنی بیوٹیفل عبادت کریں. احسان حسن سے ہے نا، بیوٹیفائی کریں اپنی عبادت کو، یہ احسان ہے. تو احسان کرنے والے جو ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے قریب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین سے اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوتی ہے. تو محسن بن جائیے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی. پھر اگلی پانچویں چیز کیا ہے؟ اتفاق اور اتحاد. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ اتفاق ہوتا ہے نا، جہاں پہ مل جل کے رہتے ہیں لوگ، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جن خاندانوں میں آپس میں جڑ کے رہنا ہوتا ہے کتنی برکتیں آتی ہیں وہاں پہ، اور جہاں پہ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے وہاں پہ کتنا زیادہ دل بھی نہیں لگتا، اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نحوست ہے. تو اختلافات جو ہیں نا وہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کی رحمت ہے جہاں پہ دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک ہوتے ہیں، جہاں پہ اتفاق ہوتا ہے. تو اتفاق بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. دیکھیں ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو جو ایسا کرتا ہے اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین سے آسمان کے درمیان کا خلا ان سے بھر جاتا ہے، اور وہ فرشتے ایسے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ اس کی بخشش کر دے، اے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. تو حدیث میں آتا ہے جب تک اس کو وہ بے وضو نہیں ہوتا اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے. یعنی جب تک نماز کے بعد بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے یہ بات کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو اس کے ہونٹ بعد میں حرکت کرتے ہیں اور میری رحمت اس کے اوپر پہلے نازل ہونے لگتی ہے. یعنی اتنا جب اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اسی طرح تہجد پڑھنے والے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت کی برکھا اس پر ہے جو برستی ہے، اس پر جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور وہ تھوڑے پسو پیش کرے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور ایسی عورت پر بھی اللہ کی رحمت برسے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے اور وہ پسو پیش کرتا ہے تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور وہ بھی اٹھ جاتا ہے. تو دونوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جب وہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز ہے جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ ہے عصر کے فرض جو ہیں ان سے پہلے چار رکعت پڑھنا. یعنی یہ بھی چار رکعتیں سنت غیر موقعہ ہیں. حدیث میں آتا ہے جو چار رکعتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی برکھا برساتا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اس کی طرف. اسی طرح نرمی کرنا، جو نرمی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی نرمی ایک وہ چیز ہے کہ جس کو مل گئی نا اس کو خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی، جس کو نرمی عطا ہو. ہم سوچتے ہیں نا نرمی سے کیا ہوگا، نرمی تو اس سے تو کام بگڑیں گے، یہ نرمی سے کام نہیں ہونے والا، یہ تو بس ہم میں سختی کروں گی تو ہوگا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہیں ہو سکتا. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر جو چیز بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، खरीदता है तो नरमी के साथ, यानी जब आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं तो दूसरे के साथ नरमी से बात करें, कोई चीज़ बेचें तो नरमी के साथ बेचें, क्योंकि जब सौदा खरीदो फरोख्त होती तो अक्सर आवाज़ें ऊंची हो जाती, बेचने वाला भी कहता है लेना है तो ले, नहीं तो जाएं, और ख़रीदने वाली भी कहती है लो तुमने क्या, मैं तो इतने का पहले लिया था तुम इतने का दे रहे हो। नहीं, नरमी, फैसला देता है तो नरमी के साथ, फैसला तलब करता है तो नरमी के साथ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी नरमी। और आपने फरमाया कि बदबख्त है वो इंसान जिससे नरमी छीन ली जाए। ये कुछ लोग होते हैं ना सख्त तबीयत, बस जिससे बात करनी बस सख्ती के साथ करनी, करख्तगी आवाज़ के अंदर, लहजा ऐसा है कि बस दूसरा डर जाए। कहते नहीं, दिल दिल हमारे बहुत अच्छे हैं, वैसे हम इस तरह बात करते हैं, मैं दिल के बहुत अच्छी हूँ। तो आपका दिल किसने देखना है? आपका दिल, आप चाहे सोने का दिल लेके अंदर बैठी हूँ, हीरे का दिल हो आपका, आपकी अगर आवाज़ और आपका लहजा, आपकी बातचीत, आपकी किसी के साथ गुफ्तगू इतनी सख्त है तो किसी ने आपके दिल को क्या करना है? अपनी जुबानों को नरम करें, बदबख्ती की अलामत में से है ये, नरमी किसी से छीन लीजिए। और हम सख्त होने को सोचते हैं कि मैं बड़ी, यानी बड़े इसके ऊपर फख्र करते हैं, तो देखो ज़रा कि मेरा रोब कितना है। रोब ऐसी बात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नरम थे। तो अगर अच्छी क्वालिटी सीखनी है ना, अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छी सिफत होती क्या है, तो अपने नबी से सीखें। जो सिफत उनके अंदर होगी वो अच्छी ही होगी, वो बुरी हो ही नहीं सकती। अगर आप ये सोचते हैं कि सख्ती है अच्छी चीज़ और इससे रोब पैदा होता है और इससे मैं कोई बड़ी बन जाऊंगी लोगों में और लोग मेरे से डरेंगे बात करते हुए और मेरा बड़ा सबके ऊपर एक, मतलब ज़रा एक कायम हो जाएगा, ज़रा एक दबदबा, तो ये गलत फहमी है। कभी भी लोग उस इंसान को पसंद नहीं करते जिसमें सख्ती होती है। तो नरमी इख्तियार कीजिए, नरमी से आपके काम बनेंगे और अल्लाह की रहमत मुतवज्जी होगी। इसी तरह आखिरी चीज़ जो कहना चाहूँगी, वो सूरह इंसान में ही, जिसको सूरह दहर भी कहते हैं, इसके आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही, अल्लाह दाखिल करता है अपनी रहमत में जिसको वो चाहता है। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल करे। इससे पता चलता है ना कि उसकी ख़ास रहमत में कोई कोई शामिल हो सकता है। तो आखिरी चीज़ क्या है? अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह मुझे तेरी रहमत चाहिए। हमने ये काम तो सारे करने हैं मगर दुआ नहीं भूलनी, क्योंकि जिसको अल्लाह चाहेगा चुन लेगा, अपनी रहमत का मुस्तहिक बना लेगा। तो ये 10 काम इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाएंगे, दुआएं भी साथ साथ मांगते रहेंगे। तो कम से कम सारे नहीं तो कोई इनमें से काम तो ज़रूर अपने लिए चूज़ करें कि मैंने ये काम करने हैं। और इनमें एक काम जो मैंने आपको बताया कि जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये अल्लाह की रहमत है, इसके ज़रिए रहमत मिलती है। आओ जिसको रहमत चाहिए वो ये ले ले, वो है कुरान करीम। और हमारा यही पैगाम है कि हर जगह लोग अल्लाह ताला की इस रस्सी को मजबूती से थाम लें, इससे जुड़ जाएं। जब आप इससे जुड़ेंगे तो आप देखेंगे आपको दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी और आखरत की भी। और जो सुकून आप जिसके लिए सोचते हैं कि सुकून यहाँ है यहाँ है यहाँ है, उसके लिए मारे मारे फिरते हैं, वो सुकून इस कुरान में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला ने फरमाया सुन लो अल्लाह का जिक्र है जो दिलों को सुकून देता है। वो सुकून जिसकी आज तक तलाश है, कभी हम ब्रांड नेम में ढूंढते हैं, कभी हम बड़े घरों में ढूंढते हैं, कभी हम पैसे में ढूंढते हैं, कभी हम बड़े करियर्स में ढूंढते हैं, वो सुकून कुरान में। आइए कुरान की तरफ, हमारी दावत यही है। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान इस वक्त पूरी दुनिया में इसके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया में हमारा ये काम चल रहा है और फ़ी सबीलिल्लाह चल रहा है, कोई फ़ीस नहीं है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम USA में रजिस्टर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे कोई भी कोई किसी को खौफ की भी ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए कोई भी लोग बा आसानी, अल्लाह का शुक्र है कि तालीम कुरान की ले सकते हैं, सीख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कुरान करीम को, जिसको समझना आज तक ऐसे लगता था कि नामुमकिन है, हम नहीं पर समझ सकते, मुझसे नहीं होगा, तो अब हो सकता है। अब तो ये सोच लें कि कुरान अब दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे पे, कुरान आपके घरों तक आ गया। वो कहते थे ना कि प्यासे को कुएं पे जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन यकीन जाने अब कुआं प्यासे के पास आ गया, बशर्ते कि आपको प्यास हो तो आप कुएं से फायदा उठा लेंगे, अगर प्यास ना हुई तो कुआं चाहे आपके सामने आके बिछ जाए, वो फिर फायदा नहीं होगा। अल्लाह की रहमत लेनी है तो आप कुआं आपके पास चल के आ गया, इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती कि घर घर में अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फैसिलिटी मौजूद है, ना आपको कहीं जाना है, ना किसी से कुछ कहना है, किसी की मिन्नतें नहीं करनी, ना कोई पैसा देना है, ना कोई गाड़ी चाहिए, ना बच्चे को किसी बेबीसिटर के पास छोड़ के जाने की जरूरत है। आप जहां कहीं पे भी हैं, दुनिया के किसी कोने में, अफ्रीका तक में, रशिया तक में, अफगानिस्तान तक में, इराक में भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बस बात वही है कि कुआं तो पहुंच गया, आपकी प्यास कितनी है, आपकी तलब कितनी है, आपकी तड़प कितनी है। और कुरान वो कलाम है कि जिससे मोमिन सैर नहीं हो सकता कभी, ये याद रखें। कभी हम ये नहीं कह सकते मैंने पढ़ लिया ना, अब मैंने कोर्स तो कर लिया, अब क्या जरूरत है, नहीं फरमाया इसके एजाज, इसके जो ये मोजज़ा है ना, मिरेकल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, तो इसके मोजज़ात ख़त्म नहीं होते, जितना आप इसको पढ़ते हैं ये ऐसे ही है कि समंदर में आप गोता लगाएं तो जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही मोती चुनेंगे। ये आम किसी इंसान का कलाम थोड़ा ही है कि एफ ए बी ए कर लिया, आपने डिग्री ले ली, अब तो घर बैठे, अब बार बार थोड़ी आप बी ए करने चले जाते हैं, हाँ वो नहीं करेंगे आप, वाकई सही बात है, लेकिन कुरान ऐसा नहीं है, ये कोई इंसानों की किताब थोड़ी है, ये अल्लाह का कलाम है, जिसमें से आप जितना इसको पढ़ेंगे आप देखेंगे नहीं से नई बातें समझ आती हैं, नहीं से नई तरीके आपको समझ आते हैं, कभी किसी तरह तसल्ली देता है, कभी किसी तरह बात समझाता है, कभी किसी तरह नसीहत करता है, तो ये कभी पुराना नहीं होता, इसका यही तो बड़ा मौजज़ा है। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको भी दावत है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से अभी हमने शुरू किए अपने कोर्स, 3 कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे शुरू हुए हैं सेप्टेम्बर से, और उसके अंदर पहला कोर्स बेसिक कोर्स है फहमुल कुरान का, और जिसमें कुरान पाक का सिर्फ तर्जुमा है और तजवीद है, दैट्स इट। दूसरा हमारा कोर्स उससे ऊपर जो ज़्यादा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं तो तालीमुल कुरान का कोर्स है, जिसमें कुरान पाक का तर्जुमा आप सीखेंगे, तफसीर सीखेंगे, तजवीद सीखेंगे, और कुछ बुक्स भी आपको पढ़ाई जाएंगी, और थोड़ा सा कुरान का पोर्शन, चंद एक सूरतों के पार्ट्स आपको हिफ्स भी कराए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सूरह बकरा की चंद आयात, सूरह कहफ की चंद आयात, क्योंकि जो ज़रूरी ज़रूरी पोर्शन है और आपको हिफ्स होना चाहिए, सूरह मुल्क, और इसी तरह थोड़े से और पोर्शंस हैं जो कि आपको हिफ्स भी कराए जाएंगे। और तीसरा कोर्स हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी तर्जुमा है, तफसीर है, वो तजवीद है, ये तो सब में ही होगा, तजवीद नहीं है उसमें, हिफ्ज़ है सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, जो क़यामत के दिन इंसान के लिए सिफारशी बनेंगी, जो बादलों के झुंड की तरह आएंगी, जो उसके ऊपर साया करेंगी, उसको सिफारिश करा के जन्नत तक पहुंचाएंगी, ये 2 सूरतें हैं जो हिफ्स कराई जाएंगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ें। और इसी तरह कुछ और पोर्शन भी कुरान पाक का हिफ्स का होगा, और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो करने होंगे, और हदीस की किताब रियाज़ु सालिहीन भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जाएगी, जो एक और टीचर हमारे पढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लासेस, वंस अ वीक तर्जुमा और तफसीर की क्लास होती है, वंस अ वीक व्हाट्सएप पे आपको हिफ्स का थोड़ा सा पोर्शन भेजा जाएगा, जो कि आप जो एडवांस वाले होंगे वो हिफ्स करेंगे, या तजवीद का है तो वंस अ वीक उसकी होगी। ऐसा कोई भी हमारा कोर्स नहीं है जो कि कोई बच्चों वाली माएँ हैं या कोई और वर्किंग वीमेन है या कोई और ऐसी मसरूफ़ ख़वातीन है जो कर ही नहीं सकती, ऐसा हमारा कोई कोर्स नहीं है। मैं खुद एक, मेरे अपने भी 4 बच्चे हैं, मैं खुद पढ़ती भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं हमेशा तालिब इल्म रहना चाहती हूँ कुरान पाक की। तो ये सब चीज़ जितनी भी हमारे साथ लोग काम करने वाले हैं, ये सभी जिम्मेदारियां घरेलू उनकी भी हैं, बच्चों की भी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, शौहरों को सलामत रखे, उनके भी साथ हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमने अल्लाह की रहमत को आवाज़ देनी है कुरान के ज़रिए, और हमने इसको अपना साथी बनाना है कब्र में। कोई और चीज़ ये याद रखें, आपके साथ नहीं जा सकती कब्र में, ना औलाद, ना पैसा, ना घर, ना कपड़े, ना जेवर, कुछ भी तो नहीं। ये क्या अपने लिए नूर नहीं लेकर जाएंगे? ये नूर जो वहाँ हमारे लिए रोशनी करे, और जो वहाँ का हमारा साथी है। तो अल्लाह ताला आप सबका बैठना कबूल फरमाए, मेरा बताना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमसे ये मजलिस कबूल फरमा ले, इसको हमारे हक़ में हुज्जत बना दे, और अल्लाह ताला इस मजलिस से जो भी आए हैं सबको खैर समेटने वाला बना दे, कि सब खैर लेकर जाएं यहाँ से। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ताला जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमा दे। या अल्लाह ताला जो बंदियां तेरी तेरे जिक्र के शौक़ में दूर दूर से आई हैं, अल्लाह ताला के कदम पे इनको अजर अजीम अता फरमाना। या अल्लाह किसी को खाली हाथ ना लौटाना, सब रहमतें समेट के यहाँ से जाएं। या अल्लाह आज का दिन इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना देना। या अल्लाह ताला इनका पहला कदम आज कुरान की तरफ उठने वाला हो जाए। अल्लाह इनके दिल खोल दे कुरान करीम के लिए। या अल्लाह ताला इनके दिलों को खोल दे। अल्लाह शैतान के वसवास को दूर कर दे, शैतान के धोखे को दूर कर दे। या अल्लाह ताला हमें गफलतों से निकाल ले। या अल्लाह ताला तू हमें अता फरमा अपनी रहमतें, जो जिनकी वसत इतनी है कि उसने सारी कायनात को घेरा हुआ है। अल्लाह ताला तू अपनी खासुल खास रहमतों के लिए हम सबको चुन ले, हमारे घर वालों को चुन ले या अल्लाह ताला, और अल्लाह अपने दीन के समझ के लिए, फहम के लिए अल्लाह ताला हम सबको चुन ले। या अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक और साले बना दे। या अल्लाह हमारी औलादों से अपने दीन की बेहतरीन खदमतें ले लेना। या अल्लाह हमारी नस्लों में मुत्तकीन के इमाम उठाना, हमारे घरों में मुत्तकीन के इमाम उठाना। या अल्लाह ताला हमारे घरों में अपने दीन को ज़िंदा फरमा दे। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या ज़ुल जलाली वल इकराम, हमारी औलादों की तरफ से हमें कभी शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से ज़मीन पे रखना और इज़्ज़त से ज़मीन के नीचे लेकर जाना। या अल्लाह ताला हमारी कब्रों को कुशादा फरमा देना, कुरान को हमारा कब्रों का साथी बना देना, हमारा सिफारशी बना देना। या अल्लाह हमारे हक़ में हुज्जत बना देना कुरान करीम को। या अल्लाह ताला, या अल्लाह हमें हमारे ख़ानदानों समेत जन्नत में दाखिल फरमाना। या अल्लाह कोई भी पीछे ना रह जाए। या अल्लाह हमें हमारे ख़ानदानों समेत जन्नत में दाखिल फरमाना। या अल्लाह हर किस्म के अपने अजाब से हमें महफूज रख, दुनिया के अजाबों से भी महफूज रख, कब्र के अजाब से भी महफूज रख, और आखरत में हशर के मैदान की जितनी सख्तियाँ, अल्लाह उन सब से हम सबको महफूज रखना, अपने अर्श का साया नसीब फरमा देना। या अल्लाह जहन्नुम की आग से हम सबको महफूज रखना। या अल्लाह हमारे घर वालों को महफूज रखना, हमारे ख़ानदानों को महफूज रखना। या अल्लाह कुल मोमिन मर्दों और औरतों की बख्शिश फरमा देना, सबको जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा देना। अल्लाह हासिबना हिसाब यसीरा, अल्लाह हमारा आसान हिसाब किताब लेना। अल्लाह दाने हाथ में अमाल नामा थमाना। या अल्लाह ताला पुल सिरात पे बिजलियों किसी तेज़ी से अल्लाह हमें गुजार देना। या अल्लाह हमें अपने सामने शर्मिंदा ना करना, हमारी पर्दापोशी फरमा देना, पर्दापोशी फरमा देना। हम सबसे राज़ी हो जाना या रब, हम सबसे राज़ी हो जाना। या अल्लाह ताला हमें दुनिया की रुसवाइयों से भी बचा और आखरत की रुसवाइयों से भी बचा लेना। या अल्लाह ताला, या अल्लाह बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा, जो हमारे फौत शुदगान हैं उनकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह ताला हमारी दुनिया की भी भलाइयाँ हमें अता फरमा, अच्छाइयाँ हमें अता फरमा, और आखरत की भी भलाइयाँ हमें अता फरमा दे। या अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा देना, ईमान पे हमारा खात्मा हो। या अल्लाह हमें ईमान पे खात्मा अता फरमाना। या अल्लाह कलमा तैयबा नसीब फरमा देना। या अल्लाह ताला जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इसको अपनी फरमा बरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला तू हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं, वो हम सब के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा लेना। या अल्लाह जिन चीज़ों से उन्होंने पनाह मांगी, अल्लाह हम सबको पनाह अता फरमा देना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا آپ سب کے सबर के साथ इस मजलिस में बैठने का और सारा बात सुनने का अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम सब जो आज बातें की हैं उनके पर अमल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों का मुस्तहिक बना दे। आपके यहाँ पे माशाल्लाह जो हमारी एडमिन्स हैं, सिस्टर अदीला हैं और बाकी साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉर्म्स लेकर आई हुए हैं। आप में से जो भी आज रजिस्टर करना चाहे, आज सोचें कि हो सकता है आज का ही वो दिन हो कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे बिठाया इसलिए कि आप ये बात सुन लें और आज आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ठीक है, तो ज़रूर एडमिशन लें। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लोग भी आएँ, ज्वाइन करें और इसको रिफ़्रेश करें अपने जो कुरान का इल्म है। कभी भी कुरान से दूर ना रहें, इसको अपना साथी बनाना है और साथी वही होता है जो हमेशा साथ होता है ना। तो इंशाल्लाह ताला, तो जो भी आप लोगों में से चाहें कि वो फॉर्म फिल करें तो प्लीज़ अपने हाथ खड़े कर लें, इंशाल्लाह ताला उनको फॉर्म दे दिए जाएंगे। ये फॉर्म फिल करके आप लोग यहीं पे इनको देकर जाइएगा, आपको रजिस्टर कर लेंगे और इंशाल्लाह आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं जी। तालीमुल कुरान में एक और कोर्स जो हम साथ कराते हैं वो सीरतुल नबी का कोर्स है, तो इंशाल्लाह आप सीरतुल नबी का कोर्स भी इसमें साथ सीरत भी आप पढ़ सकेंगे जो तालीमुल कुरान में एडमिशन लेंगे। जो फहमुल कुरान में है वो सिर्फ तजवीद और तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी ताकत के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक आप कोई ना कोई कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आफ़ियत दे सबको और अल्लाह ताला हमें खैर के साथ दोबारा मिलाए, आफ़ियत के साथ दोबारा मिलाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है
जी,
कोई किसी को।
साथा आप फिर जाएंगी,
जी
साथा आप फिर बंद करेंगी अभी,
जी जी मैं बंद करूँगी।
बस आप एक दफ़ा इनसे बात कर लें, इनके हवाले पर।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। इतनी प्यारी मजलिस रखने का अल्लाह ताला आपके हक में सदका जारिया बना दे, इसको जी कबूल फरमाए अल्लाह ताला आपसे। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।
ठीक है उस्ताद,
अच्छा
जज़ाकअल्लाह खैर,
इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
I found my green.